आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। कहा, नारायणी और गंडक नदी की बाढ़ से बचाव के लिए सरकार ने खर्च किए हैं 600 करोड़ रुपए। राज्य में कांवड़ यात्रा का सिलसिला जारी। सावन के तीसरे सोमवार के मद्देनजर कांवड़ियों की जरूरी सुविधाओं और सुरक्षा के लिए किए गए हैं प्रभावी बंदोबस्त। इटावा में हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 35 लोग गंभीर रूप से घायल। और पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रिटेन को 4-2 से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शोभित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर जिले में नारायणी नदी के भैसहा छितौनी तटबंध का निरीक्षण किया और बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री बांटी। बाद में जिले के खड्डा तहसील के तुरकहा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुशीनगर महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली होने की वजह से वैश्विक स्तर पर खास महत्व रखता है। हर साल यहां लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं। श्री योगी ने कहा कि कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए सरकार ने इसका कायाकल्प कर नया स्वरूप दिया है। उन्होंने जिले में विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि यहां मेडिकल कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है तथा विकास की कई परियोजनाएं जारी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के कुशल प्रबंधन से न सिर्फ कुशीनगर बल्कि राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी बाढ़ से लोगों को बचाया गया है।
प्रदेश में समय पर बाढ़ बचाव के उपाय प्रारंभ करने का परिणाम है जनधन की हानि को रोकने में मदद मिली। अकेले कुशीनगर जनपद के अंदर नारायणी और गंडक नदी अन्य सहायक नदियों पर भी बाढ़ बचाव के जो उपाय हुए हैं इन पर लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च करके पिछले 7 वर्ष के अंदर बाढ़ बचाव के प्रभावी उपाय किए गए, जिससे न केवल हजारों हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से बचाव करने में मदद मिली अपितु 3 लाख से अधिक आबादी को बाढ़ से बचाने में भी मदद मिली। और आज इसी का परिणाम है कि न केवल हम लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं, निश्चिंत हैं, बल्कि प्रदेश के अन्य जनपदों में भी इस पर कार्य हुआ है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन समस्याओं का निस्तारण संवेदनशीलता और प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। श्री योगी ने जनता दर्शन में इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे लोगों से कहा कि बीमारियों के इलाज के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इलाज के लिए आर्थिक मदद चाहने वाले जरूरतमंदों के एस्टीमेट की प्रक्रिया जल्द पूरी कराकर शासन को भेजें ताकि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इलाज के लिए जरूरी धनराशि मुहैया कराई जा सके। उन्होंने सभी पात्र व्यक्तियों का आयुष्मान कार्ड बनवाए जाने के निर्देश भी दिए। सर्वोच्च अदालत द्वारा हाल ही में दिए गए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के वर्गीकरण के फैसले का बहुजन समाज पार्टी ने विरोध किया है। आज लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी किसी भी तरह के वर्गीकरण के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि सरकारें मनचाही जातियों को आरक्षण देने का काम करेंगी, जिससे असंतोष होगा। इस तरह से केन्द्र और राज्य सरकारों में मतभेद होगा और आरक्षण में वर्गीकरण का मतलब आरक्षण को समाप्त करके इसे सामान्य वर्ग को आरक्षण देने जैसा होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करने और नैतिकता परक शिक्षा देने पर बल दिया है। श्रीमती पटेल ने आज गौतमबुद्ध नगर में एक निजी शैक्षणिक संस्था के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। राज्यपाल ने शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं से दूर दराज इलाकों में कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने का आग्रह भी किया। उधर गाजियाबाद में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में श्रीमती पटेल ने देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनबाड़ी केंद्र का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को किट भी प्रदान की। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज अयोध्या जिला चिकित्सालय में सामूहिक दुराचार से प्रभावित पीड़िता से मिला। बाद में प्रतिनिधिमंडल के सदस्य नरेंद्र कश्यप ने अपराध को अमानवीय बताते हुए समाजवादी पार्टी की इस बात की निंदा की कि वे आरोपियों के साथ खड़ी है। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने भदरसा कस्बे पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि इस जघन्य कृत्य करने वाले व्यक्ति के खिलाफ राज्य सरकार की कठोर कार्रवाई स्वागत योग्य है। साध्वी निरंजन ज्योति ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के इस मामले में डीएनए टेस्ट कराने वाले बयान को शर्मनाक बताया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। प्रदेश में कांवड़ यात्रा का सिलसिला जारी है। कांवड़िये विभिन्न जनपदों से प्रदेश के प्रमुख शिवालयों में दर्शन पूजन और जलाभिषेक के लिए जाते हैं। सावन के तीसरे सोमवार पर कांवड़ियों की भीड़ के मद्देनजर अमरोहा में आज दोपहर से राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यह प्रतिबंध कल सुबह तक जारी रहेगा। वहां के अपर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार ने बताया कि प्रतिबंध के दौरान सभी वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से गुजारा जाएगा। उधर बाराबंकी में लोधेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने जरूरी व्यवस्थाओं के साथ साथ सुरक्षा के प्रभावी बंदोबस्त किए हैं। और ब्यौरा हमारे प्रतिनिधि से।
श्रावण मास के दौरान शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। विशेषकर रामनगर के पौराणिक लोधेश्वर महादेव मंदिर और ऐतिहासिक औशानेश्वर महादेव मंदिर में तो लाखों की संख्या में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की आमद हो रही है। ऐसे में उन्हें सुविधाएं मुहैया कराने और उनकी सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार और पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने मंदिर और मेला परिसर का स्थलीय निरीक्षण करने के साथ ही अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिया कि घाटों को सुव्यवस्थित किया जाए। मेला में और कांवड़ियों के आने वाले मार्गों पर कानून व्यवस्था की चाक चौबंद प्रबंध किए जाएं। ज्ञातव्य है कि महादेव मंदिर में आसपास के जनपदों से लाखों की संख्या में कांवड़िये जलाभिषेक करने यहां पहुंचते हैं। मंदिर के पुजारियों ने आज ही से भारी भीड़ पहुंचने के कारण देर रात से ही मंदिर के द्वार खोले जाने का प्रबंध किया है। आकाशवाणी के लिए बाराबंकी से परवेज अहमद।
इटावा जिले में एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई और 35 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा कल देर रात जिले के ऊसराहार इलाके में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर उस समय हुआ जब रायबरेली से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस कार से टकराकर गहरे गड्ढे में जा गिरी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि घायलों को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने जिला प्रशासन को घायलों का समुचित इलाज कराने के निर्देश भी दिए। सहारनपुर में आज एक पैसेंजर ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। हालांकि कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। दिल्ली से आई रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन से धुलाई के लिए वॉशिंग लाइन जा रही थी और इसमें कोई यात्री मौजूद नहीं था। बोगियों को पटरी पर लाने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। पेरिस ओलंपिक में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रिटेन को पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह, ललित उपाध्याय, सुखजीत सिंह, राजकुमार पाल और गोलकीपर श्रीजेश ने इस जीत में अहम भूमिका निभाई। भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन से वाराणसी के खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। वे काशी के रहने वाले ललित उपाध्याय के शानदार प्रदर्शन से खास खुश नजर आ रहे हैं और स्थानीय खिलाड़ी तथा खेल प्रेमी सोशल मीडिया के जरिए भारतीय टीम को बधाई दे रही है। आगरा में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ आज प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने किया। धनपत राय सचदेवा की स्मृति में हो रही यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 11 अगस्त तक जारी रहेगी। आयोजक कैप्टन धवल सचदेवा ने बताया कि इस शतरंज प्रतियोगिता में भारत, नेपाल, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के 1000 से ज्यादा शतरंज खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। कहा, नारायणी और गंडक नदी की बाढ़ से बचाव के लिए सरकार ने खर्च किए हैं 600 करोड़ रुपए। राज्य में कांवड़ यात्रा का सिलसिला जारी। सावन के तीसरे सोमवार के मद्देनजर कांवड़ियों की जरूरी सुविधाओं और सुरक्षा के लिए किए गए हैं प्रभावी बंदोबस्त। इटावा में हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 35 लोग गंभीर रूप से घायल। और पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रिटेन को 4-2 से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।